पावन सरोवर धाम में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग धूप में, ठंड में, हाँ, सब जगह घूम रहे हैं और मुझे भी टॉलरेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। लेकिन इन मतलब प्रभु जी का बहुत अच्छा सत्संग रहा। उस स्पीकर को पीछे लगा दो, एक स्पीकर पीछे लगा दो, एकदम पीछे। हरे कृष्णा। तो पावन सरोवर धाम जो है, ये ब्रज की जो अनोखी महिमा है उसके बारे में वर्णन करता है। इसका नाम नंद सरोवर था पहले, और जैसे मैंने आपको बताया कि महाराजा महाराजाओं के अपने अपने कुंड होते हैं स्नान करने के, विहार करने के। जैसे वो यशोदा कुंड का आपने दर्शन किया वहां पर, और थोड़ा आगे उसके हम लोग जो ललिता कुंड गए थे उसके पास में कृष्ण कुंड भी है। ऐसे एक छाछ कुंड भी था, हम मुझे बताना था उसके बारे में। अभी भी है छाछ कुंड, 56 कुंड है। अभी कितने दर्शन करेंगे हम लोग, 56 दिन भी नहीं पूरे पड़ेंगे एक नंदगांव देखने के लिए। फिर भी छाछ कुंड की महिमा ऐसी कि छाछ कुंड जो ऐसे कहते हैं कि जो ग्वाल बाल होते हैं, वो ग्वाल बाल जो सच्चे ग्वाल बाल होते हैं ब्रजवासी, वो कभी भी छाछ बेचते नहीं। वो दूध, ऐसा नियम है कि दूध जब आता है तो सबको तृप्त करने तक दूध पीना चाहिए, देना चाहिए पीने के लिए। बालक मांग रहे हैं या कोई मांग रहे हैं, घर के लोग मांग रहे हैं, सबकी संतुष्टि होने के बाद में जब दूध बचता है तो उस दूध को जमाते हैं, दही जमाते हैं उसका। फिर दही जमाने के बाद में उसमें क्रीम जो होती है निकाल कर डालते रहते हैं, उसका मंथन करते हैं। मंथन जो होता है वो उसका भी एक खास सिस्टम है, वो एक दिशा में नहीं होता है मशीन के जैसा। जो लस्सी वाला बेचता है तो वो एक ही दिशा में घुमाता है उसको, लेकिन मंथन जो होता है वो दो दिशा में होता है, एक दिशा में दूसरी दिशा में, एक दिशा में दूसरी दिशा में। और वो जब हाथ से करते हैं तो अपनी भावना और भक्ति भी उसके अंदर आ जाती है। मशीन तो मशीन होता है, उसमें कोई भावना नहीं होती। और जब छाछ बनता है, मक्खन अलग हो जाता है, तो मक्खन को सबको खिला देते हैं, जिसको खाना है वो खाओ। जो मक्खन बचता है उसका ही घी बनता है, और जो छाछ है वो सबको फ्री में बांट देते हैं। आज भी ब्रज में आप जाएंगे, एक्चुअली स्पीकिंग जब छाछ बढ़ता है, बिकता है, तो वो दरिद्री संस्कृति का लक्षण है। बम्बई, मद्रास, दिल्ली, जैसे मसाला छाछ, ये छाछ, वो छाछ, मीठा छाछ बिकता है। ये सबसे मतलब धन तो लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये मन की दरिद्रता का लक्षण है। क्योंकि ये छाछ और मक्खन और दही और दूध ये बनाने का तरीका ये है, इसमें केवल मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें संतृप्ति संतुष्टि भी आविर्भावित है। जब वो होता है तभी जाके उसमें सच्ची शक्ति उत्पन्न होती है, और दो बार दोनों तरफ से जब घुमाते हैं तो जो डिवाइन एनर्जी है उसके अंदर प्रवेश करती है, तभी जाकर उस घी में, उस मक्खन में औषधि गुण निर्माण होते हैं। तो नंद बाबा के पास तो इतना मक्खन और इतना दही दूध छाछ था कि उत्सव के मौके पर या किसी भी खुशी के मौके पर, कुछ भी खुशी के मौके पर वो दही और मक्खन लेकर एक दूसरे पर फेंकते थे। जैसे हम लोग लाल गुलाब जिसमें कुछ सुगंध नहीं होता है दादर से खरीदते हैं, सब पर फेंकते हैं, वैसे कमल के खुशबू वाला मक्खन और दही एक दूसरे पर वर्षाव करते थे। जैसे कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो ये तो भी हुआ, जब राधा रानी का जन्म हुआ तभी हुआ, जब कृष्ण भगवान का पहला जन्मदिन मनाया गया तभी भी हुआ, जब कृष्ण भगवान का जो भी उत्सव मनाया गया सब समय पे, जब कृष्ण भगवान ने राक्षसों का वध किया और लौट के आए तो भी मनाया गया। इस तरह से जितने भी ब्रज में उत्सव होते हैं ये ऐश्वर्य है ब्रज का। आज जो सबसे कीमती और मूल्यवान हो गया है जिसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं बचाकर, वो ऐसे फेंकते थे वो लोग। मतलब सबकी संतुष्टि होने के बाद में सब खा पी के संतुष्ट हैं फिर भी बच रहा है। छाछ कुंड का भी ऐसा ही है, सबको छाछ पिला के, जो छाछ गिरता था ना हाथ से, ग्लास से गिर रहा है, हाथ से गिर रहा है या ऐसे बह रहा है, फैल रहा है, वो नंद भवन से उतर के छाछकुंड बन गया। यही उसकी महिमा है, वैभव, उदारता, दानवीरता, प्रेम और भक्ति भाव का जो प्रतीक है ये। जब हम भगवान को अपना जीवन अर्पण करते हैं तो भगवान भौतिक समृद्धि भी देते हैं, ऐसा नहीं कि भक्तों को गरीब भी रखते हैं वो, लेकिन भक्त जो है वो दीनता उनके हृदय की होती है, ऐसा नहीं कि वो धनी नहीं हो सकते हैं। पांडव तो बहुत धनी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अम्बरीश महाराज थे, और स्वयं नंद महाराज, विश्वानु महाराज, ये भी बहुत धनी थे, लेकिन समृद्धि जो होती है वो आत्मा की होती है, संस्कृति की समृद्धि होती है, दानी भावना की समृद्धि होती है। और जब दानी भावना बढ़ती है तो भगवान भी दानी आदमी को देते हैं। जो वृक्ष होता है ना, वो अगर अपने फल अपने आप पास रखेगा, किसी को देगा नहीं, तो नए फल नहीं आएंगे, लेकिन जब वो वृक्ष अपना फल तोड़ने देता है उस जगह नए फल आते हैं। ये दानी व्यक्ति का गुण धर्म है, जो जितना देता है उसको भगवान और देता है देने के लिए, ये भावना है। तो वैसे ये पावन सरोवर नंद सरोवर है, नंद सरोवर में यहाँ पर इतना विशाल, देखिए आप कितना, अभी भी आज की स्थिति में भी, जैसे किसी ने सवाल किया था कि कैसे नवला गाय इतनी गौशाला में रह सकते हैं, वैसे ये जो है ये आपको ये 5000 कुछ साल के बाद में दिखाई पड़ने वाला पावन सरोवर है, उस समय वो कितना महान, कितना भव्य होता होगा। कहते हैं इसकी जो घाट थे ये मणिकंचन रत्नों से और मोतियों से बने थे। हाँ, इतना सुंदर वैभव था और हर वस्तु दिव्य थी, हर वस्तु जो है रत्नों से भरी हुई थी। छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही, मैं आपको बता देता हूँ वृंदावन की, कि कैसा वृंदावन का ऐश्वर्य है, वृंदावन धाम का। वो तो कृष्ण भगवान के समय की बात भी नहीं है, वो तो कलयुग की बात है, जब अकबर वृंदावन में आए थे, सम्राट अकबर। सम्राट अकबर का ये ख्याति था, ये प्रसिद्धि थी कि वो सब धर्म का आदर करते थे, खास करके हिंदू धर्म का भी बहुत आदर करते थे। उसके नवरत्नों में से एक रत्न था तानसेन, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, बड़ा संगीतज्ञ था वो, बड़ा कलाकार था, भगवान का भक्त था। जब वो मेघ मल्लार गाता था तो किसी भी समय किसी भी मौसम में वर्षा होती थी, बादल इकट्ठा होकर बरसते थे, इतनी शक्ति थी उसके स्वर में और भाव में। और वो तानसेन स्वामी हरिदास जी का शिष्य था, स्वामी हरिदास जी वृंदावन में निधिवन में रहा करते थे, और निधिवन में उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। बांके बिहारी को वृंदावन का राजा मानते हैं। हाँ, कभी आपको मौका मिलेगा वृंदावन जाइए, ये तो खाली एडवर्टाइजमेंट यात्रा है, केवल आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, आपको और आना है, ये तो शुरुआत है, जो नए आए हैं उनके लिए शुरुआत है ये। आपको ब्रज का टेस्ट मिले, ब्रज से आसक्ति हो, एक अट्रैक्शन उत्पन्न हो, इसलिए छोटी सी यात्रा है। दो दिन में आप क्या देखेंगे, हाँ जीवन भर रहेंगे तो भी यहाँ के स्थान पूरा नहीं कर सकते। कभी दो दिन में आते, कभी पांच दिन, कभी सात दिन, कभी महाराज 15 दिन लेके आते हैं, फिर भी कभी भी एक एक हिस्सा ही पूरा होता है, पूरा कभी होता ही नहीं है। तो निधिवन जो वृंदावन में है, और निधिवन बहुत सुंदर जगह है, जहां पर 7 बजे के बाद में कोई भी जीव प्रवेश नहीं करता है, सब जीव चले जाते हैं वहां से, चूहा बंदर सब निकल जाते हैं, और अंतरंग भगवान की गुप्त लीला जो है वहां पर होती है। तो उस जगह पर स्वामी हरिदास जी, जो बड़े संगीतज्ञ थे उस समय के जमाने के, पूरे मशहूर गायक थे वो, और भगवान के शुद्ध भक्त थे वो। एक स्वामी हरिदास जी थे, एक हरिराम व्यास जी थे, एक हित हरिवंश जी थे जो भगवान के बंसी के अवतार थे, और इस तरफ चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं आए, इस तरफ वल्लभाचार्य, ऐसे बड़े बड़े महात्मा जन प्रकट हुए थे उस समय। तो स्वामी हरिदास जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए बांके बिहारी के रूप में, और उन स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे तानसेन, पंडित तानसेन। तो अपने गुरु के बारे में गौरव करते थे वो अपने सम्राट के साथ दरबार में, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम जाएंगे आपके गुरु दर्शन करने के लिए। तो स्वामी हरिदास जी के पास वो लेके आए निधिवन में, उनकी कुटिया ऐसी थी कि जैसे आप इतना झुकेंगे फिर भी वो कम पड़ेगा, इतना झुकना पड़ता था उनके अंदर जाने के लिए, जैसे कि होता ना वो सांप कैसे जाता है वैसे आपको जाना पड़ेगा, तभी वो उनकी कुटी में घुस सकते हैं, वैसे अंदर बैठ के वचन कर देते, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। एकदम विरक्त थे वो, कोई किसी सम्राट से या कोई धनी आदमी से, कोई पैसे वाला आएगा कोई दान देगा, कोई बनेगा अपना काम, हाँ कोई हलवा पूरी खाने मिलेगी, कोई उसमें उनको रुचि नहीं थी। तो स्वामी हरिदास जी के पास तानसेन जी आते हैं, दंडवत करते करते अंदर से चले जाते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, कहते हैं हमारे सम्राट आए आपको मिलने के लिए। तो अभी आप समझो आपको कोई बताएगा कि आपको मनमोहन सिंह मिलने आएंगे, आपके दरवाजे पे बाहर खड़े हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? तुरंत भाग के आएंगे बाहर, अरे महाराज जी आप यहाँ कैसे आ गए, आइए आइए हमारे पास तो साधन नहीं है, जाइए यहाँ बैठ जाइए, ये चादर बैठा के अपना बेस्ट चादर घर पे जो होगा लगाएंगे। लेकिन स्वामी हरिदास जी बोल रहे मुझे क्या उनसे काम है, उनको बोला चले जाओ, मुझे उनसे नहीं मिलना है। साधु लोग महाराज से नहीं मिलते हैं किसी को, मतलब राजा से नहीं मिलते, धनी आदमी से, तो वैभव रखता है, अधिकार रखता है, स्त्रियों और स्त्रियों को रखता है, ऐसे लोगों को साधु लोग नहीं मिलना चाहते। तो बाहर आके फिर बोले कि महाराज जी वो माफी चाहता हूँ, हमारे गुरु आपको मिलना नहीं चाहते। सोच सकते हैं इमेजिन, हाँ वो दरबार का मंत्री है उनका, एक नवरत्नों में से एक मंत्री है, वो राजा को लेके आया गुरु जी दर्शन करने के लिए, और राजा को खुद बोल रहा है कि गुरु जी नहीं मिलना चाहते आपसे। तो अकबर को बहुत बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, ये विशेष बात है, वो चले जाए साधु महाराज कौन फूकता है, आपको भी नौकरी से निकाल दूंगा, आप भी चले जाओ, तुम भी सब चले जाओ, अपमान हो गया उसका। लेकिन वो पहचानता है कि ये सच्चा विभूति आत्मा है, महान आत्मा है, इसको मेरे पद से और मेरे अधिकार से और मेरे शक्ति से और धन से कोई लेन देन नहीं है। तो वो और ज्यादा लालायित हो जाते कि नहीं इनको मिलना ही, दर्शन करना ही है मुझे। बहुत बार अंदर बाहर करने के बाद में फिर वो स्वामी हरिदास जी मान जाते हैं, और सम्राट अकबर जो है दंडवत करते 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 अंदर प्रवेश करता है, वो महाराज जी के दर्शन करता है बड़े नम्र भाव से। तो महाराज जी कहते हैं कि चलो अभी जाओ, ठीक है धन्यवाद। तो अकबर जी कहते हैं नहीं हमें आप कुछ सेवा दो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कुछ आपकी हो धाम की हो। अच्छा धाम की सेवा करोगे, चलो। तो सब लोग बाहर निकलते हैं, स्वामी हरिदास जी भी बाहर चले जाते हैं, और स्वामी हरिदास जी उनको जमुना किनारे लेके आते हैं और कहते हैं कि आपको सेवा करनी है। हाँ हम कुछ तो कुछ सेवा करनी है, क्योंकि उसको फिर भी अभी भी अपने पास जो धन है उसका थोड़ा सा उसको था कि मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं कुछ लगाना चाहता हूँ सेवा के लिए। तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, आप क्या सेवा करोगे, क्या कुछ सेवा की जरूरत नहीं, ठीक है सब। किसी धनी आदमी को बोलेंगे आप, जो को बोल रहे हैं आपको मुझे को डोनेशन देना है, हाँ आप बनाओ बताओ, कुछ जगह चाहिए आपको, कोई मंदिर बनवाना है, कुछ हॉस्पिटल बनवाना है, मैं आपको देने को तो, और आप बोलेंगे नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए आप जाइए। तो कैसे लगेगा उनको, अरे मैं कह रहा हूँ मैं धनी आदमी हूँ, मैं इतना धन लेकर आया हूँ, देना चाहता हूँ, फिर भी वो मना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं, आप कोई सेवा नहीं कर सकते, आप क्या करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तो बहुत जिद किया अकबर ने, तो स्वामी हरिदास जी ने फिर उनको जमुना जी का जो किसी घाट है ना, बहुत सुंदर घाट है, आपने देखा होगा ना महाराज जी के व्यास पूजा में भी बहुत सुंदर प्रतिकृति बनाई थी उसकी। तो उन्होंने एक कोना दिखाया उसका, एक कई सीढ़ियों में एक कोना था, वो टूटा हुआ था। तो वो कहते हैं अकबर महाराज जी ये कोने को आप रिपेयरिंग कीजिए। अरे क्या महाराज जी आप मेरे लायक कुछ सेवा दो, भी एक तो एक एक या एक आदमी आएगा दो मिनट में कर देगा। अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा, जैसे ही उनका स्पर्श उनके सर पे हुआ उनको दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ, और क्या वर्णन आता है, मणि कंचन के घाट बने हुए हैं सब जगह, सब जगह हीरे माणिक पासू मोती सब लगे हुए, उनका प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, हर कर्ण चिंतामणि है, सब कल्प वृक्ष है सब जगह पर, इतना दिव्य दर्शन हुआ प्रकाशमान, और उसमें उसको वो टूटा हुआ कोना नजर आया। अरे महाराज जी इसका रिपेयरिंग मैं नहीं कर सकता, मेरा 10 जन्म का भी राजा बनकर मैं आऊंगा और सारा धन इकट्ठा करूंगा तो भी वो कोना जो है मेरे पट्टा नहीं रिपेयरिंग कर सकता हूँ। और दंडवत प्रणाम करते महाराज जी को, फिर दर्शन उनका समाप्त हो जाता है। ऐसा है सब, हाँ बोलता हुआ क्या है सब, ये कुछ ईटे का सीमेंट निकल गया है, पानी कितना गंदा है, कुछ घाट नजर नहीं आ रहा है, इतने सारे मॉस जमा हो गया है, ये हमारी भौतिक दृष्टि है। हम कहते हैं वी आर वेरी साइंटिफिक ना, तो हम लोग कहते हैं बहुत साइंस स्टूडेंट हैं, कितना गंदा है, कहाँ कहाँ बिठाते हैं, कहीं कबूतर का चट्टी पेशाब पड़ा हुआ है, कभी खाने का कुछ बचा हुआ है, प्रभु जी बोलते हैं बैठ जाओ सब जगह पे। अरे मुंबई में हम लोग तो बिना साफ किए कुर्सी पर भी नहीं बैठते हैं, यहाँ पर मट्टी में लौट रहे हैं, इधर उधर बैठ रहे हैं, ये भारी दृष्टि है। ये बाह्य चक्षु बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, इसके पटल के पीछे जाएंगे आप, जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं भक्ति भाव से, तो आपको वृंदावन धाम का दर्शन होगा, जैसे उन्होंने उस सम्राट अकबर को दिखाया। और उसके आगे आप चले जाएंगे तो फिर दिव्य नित्य लीला जो भगवान की है, जो चलती है, वो भी नजर आएगी। एक तो यहां पर उन्होंने की हुई लीला है, एक नित्य लीला है जो चलती रहती है निरंतर, यहां पर भी चलती रहती है। कुछ लीला घटी हुई है जिसका वर्णन हम करते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, रटते हैं उसको, वो कुछ लीला यहाँ पर चलती रहती है नित्य। एक एक कण जो है, रूप गोस्वामी बताते हैं ना, छह अब्ज जो है, पता नहीं एक्चुअली मैं बराबर बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, 60 बिलियन इज हाउ मच, 60 बिलियन
1 बिलियन इज 100 करोड़,
तो 60 बिलियन कितना हो गया, 6,000 कोटि। इतने स्थान यहाँ पर है, हम कितने कर्म दर्शन करेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितना समझाएंगे, कितना समझेंगे, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसका, मर्यादित ज्ञान है उसके बारे में। लीला भगवान की अनंत है, हर हर कण कण में लीला है, हर दिन की लीला है। ऐसे भागवत में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राक्षसों के मारने का वर्णन किया गया है, इम्पॉसिबल था उनके, 7 दिन में क्या कवर करेंगे वो, परीक्षित महाराज की मृत्यु हो रही है, तो मेन मेन बताया। लेकिन बाकी शास्त्र में बताया हुआ है कि रोज एक राक्षस आया करता था, और जितने साल यहां पर थे हर दिन भगवान ने राक्षसों को मारा है। तो अगाध लीला है, इसका विस्तार और इसकी गहराई कोई पता नहीं कर सकता है कि कितना है इसके अंदर, अनंत सागर है ये। हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, हम लोग सब लोग यहाँ पर ऐसे दोपहर के 4 बजे यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, थके हुए हैं, सो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कहाँ जाना होगा अभी। हाँ, कितनी लिमिटेड हमारी कैपेसिटी है ना, इसको समझने की, इसको ग्रहण करने की। हम लोग शरीर के बंधन में, शरीर थकता है तो हम थक जाते हैं, शरीर उत्साही तो हम उत्साही हैं, नींद मिलेगी तो अच्छा है, नींद मिलेगी तो दिमाग आउट हो जाता है पूरा। हाँ, समझ में आता नहीं है, दिन में अच्छा समझता, शाम को कुछ समझता ही नहीं है। और दिन में भी कुछ समय कुछ समझता नहीं है भोजन के बाद। है ना, तो ऐसा टेक्निक है बॉडी के अंदर, कुछ तो ऊपर नीचे होते रहता है। तो ऐसे ही शरीर में हम लोग हैं, उसमें हमारी चेतना है, उसमें हमारी बुद्धि है, उसमें जागृत अवस्था है, उसमें निद्रा की अवस्था है, उसमें क्या बीमार की अवस्था है, बुढ़ापे की अवस्था है, जवान अवस्था है, कितना उसमें परिवर्तन होते रहता है। इन सारे अलग 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 बंधनों के बीच में हम रहते हैं, और कभी मन दुखी है, कभी मन खुशी है, कभी किसने अपमान किया है, कभी किसने प्रेम से बोला है, कभी कुछ डांट के बोल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कितनी मन की अवस्थाएं हैं। ये सभी में से अगर आपको भगवान को समझना है, उनके बारे में कुछ जानकारी करनी है, तो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है ना, माहौल बनाना पड़ता है, वातावरण बनाना पड़ता है। ये कथा अगर हम मुंबई में कहेंगे तो एक उसका एक असर मिलेगा, लेकिन पावन सरोवर के किनारे पे आएंगे और पावन सरोवर की कथा सुनाएंगे तो पावन सरोवर का अलग असर आपको मिलेगा। हर एक वातावरण की एक शक्ति होती है ना, जैसे KM हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेंगे आप और भक्ति वेदांत में लेंगे, कुछ फर्क है ना उसके अंदर, वातावरण के अंदर जो शक्ति होती है ना, वैसे ब्रज का वातावरण है। ये केवल अपने हमने आपको एक कथा बताकर उसमें क्या वैभव था वो आपको दिखाया, लेकिन वैभव भी वो एक जगह पे रहे, लेकिन ब्रज का वैभव जो है वो सा स्थित वैभव नहीं है, वो चिरंतन वैभव है, वो सब वातावरण में सब जगह फैला हुआ है, चेतना के रूप में। चेतना जो है ना बहुत सूक्ष्म होती है, वो आत्मा पर असर करती है। ठंडी हवा जो है वो अपने को चर्म पे आना अच्छा लगता है, गर्मी आए तो जला देता है तो कष्ट होता है, ये बाह्य स्तर पर है। लेकिन वातावरण जो आध्यात्मिक होता है ना, वो चेतना पर परिणाम करता है, चेतना का विकास करता है, और यहाँ अनंत मात्रा में चेतना उपलब्ध है। और फिर भी वो गोलोक वृंदावन का एक हिस्सा है, पूरा गोलोक वृंदावन भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितनी शक्ति है उसके अंदर और कितना हम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार हमको आपको हम विनती करते रहते हैं कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, पुकारिए, ताकि जितना बटोर सके उतना बटोरिए। पता नहीं कब, अभी हम लोग कई साल से आ रहे हैं, जो आप में से कई लोग कई बार भी आए होंगे, कुछ लोग पहली बार भी आए होंगे, कुछ लोग दूसरी बार भी आए होंगे, लेकिन हर बार ये हमको सोचना है, ऐसे नहीं अरे पिछली बार भी यहाँ पर आए थे, आप तो वही कथा सुनेंगे, अभी क्या वापस सुनना है इसको। ये हमारा भौतिक माइंड है, दिस इज मटेरियल माइंड। वो लीला को आप अनंत बार भी सुनेंगे, और अगर आपकी चेतना सही है तो आपको हर बार उसमें से नया नया आनंद मिलेगा, नित्य नया आनंद, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। मैंने यहाँ बैठकर पावन सरोवर की कथा कई बार की है, लेकिन कभी भी लगा नहीं अभी क्या आप वही कथा बताने का, कुछ नया कथा ढूंढो अभी पावन सरोवर में, इतना लीला हो गया होगा इधर, कोई और लीला ढूंढो अभी, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो लीला जो है वो स्वयं भगवान है, नाम रूप लीला धाम स्वयं भगवान है। और उसमें अनंत, आप जितना गोता लगाओगे गहराई में उतनी अधिक गहराई है, जितना अधिक दूर जाओगे उतना विस्तार भी अधिक अधिक है, कोई इसमें अंत नहीं है किधर भी। भगवान स्वयं अनंत को कहा गया है, उनका हर चीज अनंत है, इसमें कोई किसी भी दिशा में किसी भी विषय में किसी भी मात्रा में कोई अंत नहीं है, सब अनंत है इसके अंदर। तो उस अनंत को थोड़ा बहुत समझने के लिए प्रयास हमको करना चाहिए, इसलिए भौतिक अवस्था से परे होकर हमको ग्रहण करने की अभिलाषा होनी चाहिए, प्रयास भी होना चाहिए। डॉक्टर मोहन जी आप कितनी बार आए यहाँ पर?
फर्स्ट टाइम आए यहाँ
पर। हाँ लेकिन ब्रिज में तो आए ना पहली बार भी। हाँ तो ऐसा अद्भुत यहाँ पर नजारा है, लाडली अद्भुत नजारा है, बेसहारों का सहारा बरसाने में है, ऐसे कहते हैं। तो ये जो अद्भुत नजारा है ये कृपा का नजारा है, हाँ इसको ग्रहण करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा, चाहे बीमार अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, जवान अवस्था में हो, बुढ़ी अवस्था में हो, आत्मा तो वही होती है, आत्मा बूढ़ी जवान नहीं होती है, और आत्मा के लिए वही खुराक है भगवान की कृपा का और ऐसे वातावरण में रहने का। धाम निवास ये हमारे 64 भक्ति के जो आवश्यक अंग है उसमें से एक आवश्यक अंग धाम निवास है। कुछ समय के लिए क्यों ना हो, परमानेंट नहीं हो शायद, लेकिन जितना समय मिल रहा है, जितने क्षण मिल रहे हैं, जितने निमेश मिल रहे हैं, जितने लव मिल रहे हैं, उतना भी निवास यहाँ का अगर सच्चे रूप में हम करते हैं तो ये कृपा आपके हृदय को छुएगी और भगवान तक पहुंचाएगी आप। परिपूर्ण आत्मा की अवस्था में भी हम भगवान को पूर्ण समझ नहीं सकते हैं, भगवान तो अथाह हैं। जो साक्ष्य रस में रहेंगे तो साक्ष्य रस को समझेंगे ना, गोलोक वृंदावन में जाएंगे फिर भी साक्ष्य रस के अंदर भी आप लिमिटेड रहेंगे, साक्ष्य रस अनलिमिटेड है लेकिन आप उसी रस में रहेंगे। इस तरह से जीव की कैपेसिटी जो है वो सीमित ही है और भगवान की कैपेसिटी अनंत है और हम उनके अंश हैं। तो ये जो पावन सरोवर नंद सरोवर है इसमें नंद महाराज स्नान किया करते थे और इसी में यशोदा मैया का भी एक घाट था, मतलब एक हिस्सा उनका भी था, प्राइवेट हिस्सा था। जैसे होता ना कभी कब आप जाएंगे उधर नासिक में जाएंगे तो जनाना घाट होता है, एक मर्दाना घाट होता है, एक आदमी लोग करते हैं एक औरत लोग स्नान करते हैं, वैसे यशोदा मैया का भी यहाँ पर घाट था और उसमें वो कृष्ण भगवान को लेके आया करते थे स्नान करने के लिए बलराम जी के साथ और आगे नंद महाराज करते थे। और उसी में नंद यशोदा मैया ने एक कुआं खोदा, जब राधा रानी को मना कर लेके आए यहाँ पर कृष्ण भगवान के रसोई बनाने के लिए दुर्वासा मुनि के वरदान के बाद, क्या वरदान दिया उन्होंने हाँ बताइए, इनके हाथ से जो भी बजा प्रसाद बनेगा, जो भोजन बनेगा वो अमृत जैसा स्वादिष्ट होगा, जो भी उसको पाएगा वो रोग मुक्त होगा और एक भी बताना बाकी रह गया उसमें, जो भी वो प्रसाद पाएगा वो हमेशा विजयी यशमान होगा, कीर्तिमान हो जाएगा, उसकी कीर्ति बढ़ती रहेगी। तो तुरंत यशोदा मैया के मन में आए तो उन्होंने कीर्ति मैया से बात की और बुलाया उनको यहाँ पर और यहाँ पर कुआं खोद के उनको जल की व्यवस्था की और यहीं से वो कृष्ण भगवान के लिए रसोई बनाती थी। और जो बताया दीनबंधु प्रभु ने आपको कि वो खिड़की से झांकना और टेढ़ा मुंह करना भगवान का, वो सब लीला यहीं की है नंद भवन और यहाँ की, यहीं पर सनातन गोस्वामी ने निवास किया है। सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, जैसे महाराज ने बताया हमारे परसों के प्रवचन में, पहले प्रवचन में, कि वो बड़े बड़े धनी थे, एक अर्थमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे उस समय के नवाब हुसैन शाह के राजा के राज्य में, इतने विद्वान थे वो, इतने धनी थे, उनके पास में बड़े बड़े जहाज भरे भरकर सोने की मोहरे थी, कितना होंगे उसके अंदर करोड़ों अब्जो कितने पता नहीं, सोने की मोहरे थी उनके, वो धन था उस समय का करेंसी, और इतना तो धन था लेकिन कितना अधिकार था उनके पास, कितना शक्ति था उनके पास, कितना प्रभाव था उनका, कितने अनुयायी थे उनके, हर चीज से वो समर्थ थे, लेकिन सब चीज उन्होंने त्याग दे दिया यहाँ पर आके भिक्षुक बनने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ का धन जो है वो उससे कई गुना ज्यादा है, जितना विशाल हमको अनंत लगता है उतना धन उन्होंने छोड़ दिया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलमति श्रेणीम सदा तुच्छवत, एकदम तुच्छ मान के उसको छोड़ दिया। जैसे कोई जाता है ना लैटरिन करने के लिए और लैटरिन छोड़ के आता है, उसमें कोई आसक्ति रखता नहीं है, छोड़ देता है उसको, उसी तरह से धन का त्याग कर दिया उन्होंने और यहाँ पर आके भिक्षुक बने। ब्रज में रहने के लिए, ब्रज का विकास करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर भजन किया है। वो सनातन घाट भी कहते हैं, वो तो अभी उनके नाम से जाना गया है। नंद सरोवर था, यशोदा सरोवर था, यशोदा घाट था। और प्रभुपाद के शिष्य थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, तो भगवान के नाम में उनको बहुत रति थी, दिन रात जप किया करते थे। और इसी सरोवर के किनारे उनकी भजन कुटी थी, उनका भी देहांत हो गया कुछ साल पहले। दोनों का भजन कुटी, सनातन गोस्वामी की भजन कुटी और अकिंचन कृष्णदास बाबा की समाधि, दोनों एक ही जगह पर है। और इसका जो उद्धार किया है जो महाराज जी, उनका भी समाधि उसी जगह पर है। तो ये बड़ी भजन की स्थली है, बहुत पवित्र स्थली है। और ये स्थली ब्रज का जो महात्म्य है उसको वर्णन करता है, क्योंकि तो भगवान कहते हैं कि ब्रज जो है, भगवान का जो धाम है, घर है भगवान का, ये परिपूर्ण है। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें आने के बाद में आपको ऐसा लगने की ज़रूरत नहीं कि हम द्वारका नहीं गए अभी तक, अभी तक श्रीरंगम नहीं गए, अभी तक हम वहाँ पुष्कर नहीं गए, अभी हम डाकोर नहीं गए, ऐसा आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे बद्रीनाथ नहीं गए अभी तक हम, उधर का गंगोत्री जमुनोत्री नहीं गए, नील पर्वत नहीं देखा हमने, महेंद्र पर्वत नहीं देखा, और कोई मानसरोवर नहीं देखा। ऐसे पवित्र स्थान तो अनंत हैं भारत में, लेकिन सारे पवित्र तीर्थ जो हैं वो श्री वृंदावन धाम में विराजमान हैं, इसी जगह पर है। इसके प्रमाण दिए गए कई शास्त्र में। जैसे फॉर एग्जांपल एक कहानी आती है कि जब भगवान जन्म नहीं हुआ था उनका, नंद बाबा बड़े बूढ़े हो गए थे, उनका उम्र 85 के ऊपर हो गया था, तभी भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं चार धाम की यात्रा करूँगा। तो यथावकाश वो गोकुल गए, जमुना जी किनारे पुत्र प्राप्ति हुई, कुछ समय बीता और भगवान बड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमको मन्नत पूरी करनी चाहिए, चलो हम चलेंगे अभी चार धाम जाएंगे। तो भगवान को ये आइडिया पसंद नहीं आई, उन्हें बाबा आप नहीं जाएंगे, क्यों जा रहे हैं आप ब्रज छोड़ के, थोड़ा सा उसको घुमा दो, थोड़ा सा उसको एंगल में कर दो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस धाम को यहाँ प्रकट करेंगे, आंख बंद करो। आंख बंद कर दिया, तब वो कामेवन में थे सब लोग, कामेवन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, किसी को आना है तो आप 17 फरवरी को वापस आ जाओ, हम लोग सबको कामेवन लेके जाने वाले हैं, यात्रियों के लिए, यात्री आने वाले बंबई से। तो कामेवन में थे, आंख बंद कर दी, तो आंख जब खोली तो वो बद्रीनाथ में थे, मतलब बद्रीनाथ में नहीं थे, बद्रीनाथ यहाँ प्रकट हो गए थे। नर नारायण जो पर्वत है उसके बीच में, फिर वो अलकनंदा नदी बह रही है, और उसमें चार धाम एक साथ प्रकट हो गए दूर दूर। लेकिन कृपा उसकी ऐसी है कि उस चार धाम में जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। हिमालय में जो हवा का दाब जहाँ कम है, ऑक्सीजन कम है, बहुत कष्ट है, पीड़ा है, बहुत ठंड है वहाँ पर, वहाँ तक पहुँचना मतलब पानी में हाथ रखना मतलब बर्फ में हाथ डालने जैसा है। केवल बह रहा है इसलिए पानी है, अगर रुक जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, इतना ठंड है वहाँ पर, बर्फ बनी रहती है हर जगह पे। तो वही चीज़ें यहाँ पर एकदम आसान करके भगवान प्रकट कर देते हैं। कोई एक आधा घंटे में चढ़ के पूरा चोटी पर पहुँच सकता है, अपना झंडा लगा सकता है कि एवरेस्ट हो गया। क्या कहने का तात्पर्य है कि जो अन्य तीर्थ है इस विश्व के, वो सारे भगवान ने इसमें प्रकट किए हैं। नंद बाबा ने स्नान किया है हर की पैड़ी पे, हरिद्वार, नर नारायण ऋषि सबका दर्शन किया है उन्होंने। और अभी भी आप जाएंगे, अगर आप पहले कभी बद्रीनाथ गए होंगे, आपको जरा भी लगेगा कि नहीं कि आप बद्रीनाथ नहीं है, बद्रीनाथ में ही आपको लगेगा। तो हम 3-4 बार जा चुके हैं, वही अनुभव, उससे भी अधिक अनुभव आपको तीव्र वहां पर आएगा, क्योंकि वो भगवान के धाम में प्रकट हुआ तीर्थ है। मतलब वो धाम भी उस तीर्थ की यात्रा, तो तीर्थ भी उस धाम की यात्रा कर रहा है, वो भी अपने, जैसे वो तीर्थ जो होते हैं ना, वो भी व्यक्ति होते हैं, वो भगवान की सेवा करने के लिए तीर्थ रूप धारण करते हैं, और वो भी भगवान के धाम की यात्रा करते हैं। तो बद्रीनाथ केदारनाथ जब वहां प्रकट होते हैं, तो क्योंकि वो बद्रीनाथ केदारनाथ ब्रज में है, इसलिए उनका भी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपका जप बहुत अच्छा हो जाएगा, बम्बे में भी आप प्रयास कर रहे हो जप करने का, लेकिन यहाँ बैठेंगे तो आपको तुरंत आसानी हो जाएगी जप में, एकदम स्वयं स्फूर्त जप होगा आपका, क्योंकि आप पावर हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपको पावर को कनेक्ट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, शायद लौकिक बिजली नहीं मिलेगी यहाँ पर, लेकिन वो पावर जरूर मिलेगी आपको। ऐसा शक्ति है उसके अंदर। तो इसलिए वो धाम जब इसमें प्रकट होते हैं तो अनंत शक्ति को प्रदान करते हैं और वो भौतिक कठिनाइयों को छोड़कर आसानी से आपको पार करने में सहायता करते हैं। जैसे केदारनाथ पर्वत है, हाँ, एक 15 मिनट में आप पूरा चढ़ सकते हो ऊपर। वही केदारनाथ कितना दूर है पता है, 19 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है। वहां का आगे रास्ता ही नहीं, उसके आगे केवल चढ़ान चढ़ाना है, या तो घोड़ी पर बैठ के या तो चल के या बग्घी में जाना पड़ता है। कितना कष्टमय यात्रा जो है, यहाँ पर आने से एकदम आसानी से होती है और उससे अनंत गुना लाभ होता है यहाँ पर उसका दर्शन करने से। ऐसे एक बार नंद बाबा ने कथा सुनी गंगा जी की महिमा के बारे में, और सब संतों के बीच में बैठ के कथा सुन रहे थे। तो कथा में ऐसा प्रसंग आया कि गरुड़ जी ने सांप को पकड़ा और वो सांप को लेकर भाग रहे थे, मतलब जा रहे थे अपने खाद्य को लेकर खाने के लिए। तो सांप की जो पूंछ थी वो लटक रही थी उसके हाथों में से। वो गंगा जी की तरफ बढ़े, थोड़ा झुकाव लिया और फिर ऊपर बढ़े, तो गंगा जी को झुकाव लेने के समय उस सांप की पूंछ का स्पर्श गंगा जी के जल से हुआ और एकदम वो सांप जो था वो चतुर्भुज विष्णु दूत बन गया, उसकी सारूप्य मुक्ति हो गई, वैकुंठ धाम के जाने के योग्य हो गया वो। तो गरुड़ जी ने आश्चर्य देखा, रे हाथ में का तो सामान जो था वो कुछ अलग शेप का था, अभी अलग शेप का बन गया। देखा रे चार भुजा वाले बन गए वो, हाँ, जिनका सामला रंग हो गया, चार भुजा में शंख चक्र पद्म गदा प्रकट हो गए, पीताम्बर मिला सब कुछ। अरे ये तो विष्णु दूत है। तो उन्होंने हाथ में रखने के बजाय अपने पीठ पे उनको बिठाया और वैकुंठ ले गए उसको सीधे। आनंद बाबा कथा सुन रहे, देखिए कथा सुनने में भी एक बात होती है। नंद बाबा ने जब ये बात सुनी झट से खड़े हो गए। वो हम लोग तो खड़े नहीं हो गए, हम लोग बैठ के सुन रहे आराम से, चलो ठीक है कथा चल रही सुनते रहेंगे, प्रसंग क्या है। बोले अब भी जाना है मुझे गंगा जी के पास, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ, चलो सब लोग ब्रजवासी लोग चलो। तो फिर भगवान को पसंद नहीं आ रहे, ये तो बार बार बाहर जाने की बात करते रहे, क्यों जाते हैं बाहर। अरे बाबा नहीं जाएंगे आप बाहर। बोले क्यों जा रहे हैं, नहीं हमको गंगा जी का स्नान करना है, अपनी कथा सुनी महिमा सुनी है, कुछ लाभ तो लेना चाहिए। कथा सुनकर क्या लाभ है उसका, अगर कार्य में नहीं लाएंगे उसको तो कथा सुन के क्या लाभ है। हाँ केवल स्टोरी सुनना थोड़ी, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल हम आपका करवाते। तो चलिए गोवर्धन के बीच में लेके गए उनको और आह्वान किया मन में गंगा जी को। भगवान के मन से सबके आंखों के सामने मगरमच्छ पर बैठी हुई श्री गंगा देवी प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर, छोटे से कहना है क्वाल बाल लटखट बालक, उसको हाथ जोड़ के बोल रही हैं देवी जो सबके ब्रजवासियों के लिए पूजनीय है, जिसकी महिमा अभी अभी वो सुने हैं। वो हाथ जोड़कर नंद बाबा देख रहे हैं अपने बालक को हाथ जोड़कर विनती कर रही है, क्या सेवा करूं आपकी, बताइए क्या आदेश है हमारे लिए। तो बड़े ठाट से ठाकुर जी नंद बाबा के सामने बोल रहे हैं, आपका जल से इस विवाह को भर दो और एक बढ़िया कुंड बना दो। तो सबकी आंखों के सामने गंगा देवी जो मगरमच्छ में विराजमान है वो एक बड़ा विशाल सागर जैसा कुंड बना देती है। यहाँ पर सबकी आंखों के सामने हो रहा है ये लाइव, कोई स्टोरी नहीं सुन रहा है कि कल आके देखना तैयार मिलेगा आपको, ऐसा नहीं, सबकी आंखों के सामने बन रहा है। और क्या तर्क करेंगे वो, नहीं जाएंगे हम, ना तो बालक है नटखट लीला कर रहा है, ऐसा नहीं है। सबके सामने भगवान ने प्रस्तुत किया उसको और फिर सभी ग्वाल वालों ने जो जा रहे थे गंगा जी में वो सब लोग ने वहां पर स्नान किया और धन्य हो गए वो सब। ऐसे भगवान ने एक बार, सब गोपियां काम्यवन में उनके साथ विहार कर रही थी और चर्चा कर रही थी, अरे हमने सुना था तुम पिछले जन्म में रामचंद्र बनकर आए थे और रावण का वध किया था तुमने। अरे नहीं नहीं वो तो सब ऐसे ही, मैं नहीं था वो रामचंद्र भगवान तो बड़े भगवान है, वो मेरे साथ तुलना करना और मैं उसको मैं हूं ऐसे बोलना गलत बात है, सब सही नहीं है। नहीं 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 आप तो बहाने बना रहे हो, हम जानते हैं, हमने सुना है मैया से कि आपने आप ही थे वो। कभी नरसिंह बनकर आते हैं आप, कभी रामचंद्र बनकर आते हैं, हमको आपको अब दिखाना ही होगा, अभी तो प्रेमी जीव है वो। हाँ अभी कोई प्रधानमंत्री का कोई बालक होगा तो वो कुछ भी मांग सकता है उनसे ना, वो इट डजंट केयर, तो पिताजी वो कुछ भी हो हमको चाहिए अभी का अभी। तो गोपियां प्रेम में भगवान से इतने उन्नत हैं, बोले अगर हम को आप रामचंद्र जी का रूप नहीं दिखाएंगे तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। अभी आप बोलेंगे क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, ठीक है कल आके बात करोगे तो देख लेंगे, अभी तो छोड़ो कोई बात नहीं, बाय बाय सी यू, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए गोपियों के मुख से ऐसा वाक्य निकलना कि हम आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे, ये बड़ा वज्राघात है उनके लिए। जब ग्वाल बाल बोलते हैं ना कि अरे, जैसे मैंने आपको कथा बताने में भूल गया उधर में, जब ग्वाल बाल मैया बुला रही है उनको तो उनका खेल जो एकदम एकदम लिमिट में आ रहा है, बीच में ऐसे एकदम भगवान हारने की पोजिशन में है, और मैया बुला रही है तो अच्छा होगा ना, मैया बुला रही जाना पड़ेगा अभी। गेम भी हार रहे हैं और मैया बोलते हैं मराठे बोलते हैं पड़ते फड़ाचे आदमी, मतलब फल गिर रहा है तो उसका ले लो, जो भी वरदान है ले लो, भागो वहां से। बोले अच्छा, मैं मैया का बहाना बना के जा रहे हो, अभी ऐसे मौके पे जाओगे ना तो कल से आपको खेल में नहीं लेंगे हम। तो बृहद भागवतम में उसका वर्णन आता है कि भगवान को वो जो वाक्य है ग्वाल बालों का वो असह्य है कि टुमारो ही विल नॉट टेक अस टू प्ले, टेक मी टू प्ले, इट्स इम्पॉसिबल टू टॉलरेट दिस स्टेटमेंट। तो मैया को छोड़ के वापस खेल रहे हो। बोले हारेंगे चलेगा, लेकिन मैं हार के जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा खेलने के बाद ही जाऊंगा। तो ऐसे गोपियां कह रही है उनको कि आपसे बात नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे। तो वो ना ना बोल रहे हैं, फिर भी उनको हाँ हाँ करना पड़ता है। बोले आग बंद कर लो, अभी खोलो। जैसे ही खोलते ना तो कृष्ण भगवान रामचंद्र बने हुए हैं। उनका जो दुर्वा था ना, उनका दुर्वा था ना क्रास, वैसा रंग है उनका, हरे रंग का शरीर है उनका। बाद में बलराम जी, वो दाऊ जी जो है वो लक्ष्मण जी बने हैं, धनुष धारण करते हुए। हाँ, और पुकार रहे रावण। तो अचानक वहां पर जल पैदा होता है पूरा, एकदम सबके आंखों के सामने समुद्र ऐसा जलता रहता है। और वहां से एक 10 मुख वाला राक्षस आता है, मैं रावण हूं। तो रावण को मारने के लिए भगवान तुरंत सब वानर सेना प्रकट हो जाती है, उन सब आंखों के सामने हो रहा है एकदम। कहते ना फास्ट फॉरवर्ड रिप्ले है ये, एकदम फटाफट हो रहा है। उनके तो बहुत कम से कम 7 दिन लगे उनको बनाने में, ये 7 सेकंड के अंदर पूरा सेतु बन गया सबके आंखों के सामने। और यहाँ पर प्रभु रामचंद्र बने हुए कृष्ण भगवान जो है वो जा रहे हैं, और वहां से कुछ ही क्षणों में राक्षस का वध कर देते हैं श्रीलंका। और बोलते अभी आंख बंद करो, आंख बंद करते हैं। फिर खोलते हैं तो वापस कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सब वही हैं, लेकिन अभी रिमेनिंग क्या है वहां पर, रामेश्वर रिमेनिंग है वहां पर, जहां से उन्होंने श्री शंकर जी की पूजा की थी, सेतु भी वहां पर रिमेनिंग है और श्रीलंका भी वही है। तो भगवान ने उनके लिए श्रीलंका, सेतु बंद, रामेश्वर सब उत्पन्न किया। देखिए आप कितनी बड़ी बात, ऐसे अनंत कथाएं हैं, मैं अभी बोलते जाऊंगा तो शाम तक यहीं बैठना पड़ेगा। गया कुंड है, द्वारका है, क्या नहीं है, सब कुछ विराजमान है यहाँ पर। तो ऐसे ही इसकी कथा है, इसकी प्रस्तावना इतना मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि ब्रज परिपूर्ण है, ब्रज में आने वाला व्यक्ति कहीं और जाने की इच्छा नहीं होनी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का निवास तो अंतिम निवास है। यहाँ पर कुछ क्षण का, कुछ दिन का, कुछ घंटों का, कुछ महीने का, चिरंतन परमानेंट शिफ्टिंग जो भी है वो केवल भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। यहाँ पर आने के बाद में आप समझिए, आपको पता नहीं होगा कि कभी कभी ना बहुत धन मिलता है ना, तो पता नहीं कितने जीरो उसके ऊपर होंगे, उनको पता नहीं चलता है। बहुत धन मिला है तो आई डोंट नो हाउ मच इज देयर, 4 कमरे भर के सोने की मोहरें भरी हुई है, तो क्या गिनेंगे आप उसको। कितना गिन सकते हैं, वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर केवल आने मात्र से ही, अगर आपको पता है कि आप कहाँ पर आए हैं, इसका महात्म्य क्या है, तो केवल आने मात्र से यहाँ की हवा सूंघने से और पानी पीने से और निद्रा लेने से और सेवा करने से आपका जन्म जन्मांतर का जो बंधन है वो खत्म होकर आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति निश्चित होगी। ये इस जगह का वरदान है, आप माने या ना माने, यकीन करें ना करें। तो वैसे एक बार मैया जो, यशोदा मैया जो है वो मटरी बना रही थी। जानते मटरी क्या होती है, मटरी एक ड्राई पदार्थ होता है, वो बहुत दिन टिकता है, यात्रा में सफर में हम लोग यूज करते हैं उसको, यूपी में ज्यादा बनता है। तो मैया जो है मटरी बना रही थी, तो ठाकुर जी आए, उन्होंने बोला कि अरे क्या बन रहा है आज, रोज तो नहीं बनता है। नहीं, वो बाबा बाहर जा रहे हैं ना, अभी बाहर कहीं जा रहे हैं बाबा। कहाँ जा रहे हैं? और बाबा ने अभी त्रिवेणी संगम का महिमा सुना है। अभी उनको त्रिवेणी संगम जाना है, गंगा सरस्वती जमुना जी का जो मिलाप है त्रिवेणी संगम में, वहां पर आके उनको स्नान करने की इच्छा है। वो सब बड़े बड़े ग्वाल बालों को लेकर जा रहे हैं, मेरा कर्तव्य है उनको रास्ते के लिए प्रसाद देना, मैं मटरी बना रही हूँ। फिर वही बात, बोले ये बढ़िया नहीं है। तो बाबा से मिलते, बाबा आप क्यों जा रहे हैं? तो बोले गंगा जमुना सरस्वती बहुत पवित्र नदियां हैं, इनमें स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, इससे मुझे जाना है सब लोगों को लेकर। तो फिर वो निकाल के, ऐसा करो बाबा आप कल जाओ, कल जो है ना अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया जो है ना 3.5 मुहूर्त से आधा मुहूर्त माना गया है, बहुत उसमें कुछ भी काम करो आप सब यशस्वी हो जाता है। तो आप क्यों ना अपनी इतनी यात्रा कर रहे हो, तो आप क्यों ना कल जाते हो, आज जाने से क्या लाभ है, आज द्वितीय है, कल तृतीय है, एक दिन से क्या होगा। अभी हर समय आंखों के सामने प्रकट करने के बदले में उन्हें कहा कि थोड़ा सा अलग से लीला करता हूँ, है ना। तो वो ठीक है, अरे बालक सही बात कह रहा है, कोई बात में दम है, ठीक है, एक दिन पोस्टपोन करते हैं। और रोज यहाँ पर स्नान करने आते हैं ना, एवरी डे सुबह भोर के समय पर आते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारा उनका साधना है नंद बाबा का। लेकिन इस दिन में जब स्नान करने आते हैं, मतलब जिस दिन वो पोस्टपोन करके अक्षय तृतीया के दिन सुबह जब वहां पर स्नान कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, एक बड़ा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है उनको एक कोने में नंद सरोवर के, उनके सरोवर में। अरे ये इतना बड़ा प्रकाश 4 बजे समय कैसे हो सकता है। तो उस प्रकाश की ओर जाने लगे वो, तो उनको दिखाई पड़ा कि नहीं प्रकाश नहीं, एक बड़ा राजा महाराजा जैसा एक व्यक्ति है जिसके शरीर से प्रकाश आ रहा है। और फिर दिखाई पड़ रहा है कि कुछ कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो राजा महाराज जो है, वो बड़े मुकुट पहन के, राज वस्त्र पहन के, अलंकार पहन के, पूरा अलंकार विभूषित है पूरा, और नंद सरोवर में स्नान कर रहा है। और नंद सरोवर में स्नान कर रहा है तो यहां तक तो सब ठीक बात है, बढ़िया बात है, स्नान तो करना ही चाहिए। लेकिन स्नान करने के बाद में इसके किनारे में जो रज है उसमें लोटपोट हो रहा है, दोबारा जल में प्रवेश कर रहा है और स्नान कर रहा है, फिर वापस आ रहा है और रज में लटपट हो रहा है, वापस स्नान कर रहा है। तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो गया, अरे इनको तो देखा कभी नहीं है और वो कर भी ऐसा कर रहा है जैसे कि कोई करता नहीं है। बोले महाराज जी दंडवत प्रणाम, आपको नंदगांव में पहली बार देखा, आप कौन है महाराज जी, आपका परिचय दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं प्रयागराज हूं, मैं स्वयं त्रिवेणी संगम हूं। अरे दंडवत प्रणाम करते, क्योंकि जिनके पास जाने की तमन्ना थी वही है, वो स्वयं यहाँ पर खड़े अपने सामने, तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। लेकिन महाराज जी एक शंका है मन में कि आप क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हम लोग स्नान करके चले जाते हैं, आप स्नान करके बार बार मट्टी में लोटपोट हो रहे हैं, बार बार स्नान कर रहे हो। वो कहते हैं कि साल भर में मेरे अंदर, मेरे संगम के अंदर करोड़ों अब्जो लोग आते हैं अपने पाप को धोने के लिए, पाप करते हैं और यहाँ के धोते हैं सब, अपना पाप जो है मुझ में छोड़ के जाते हैं, और मेरा जो पाप का स्टॉक है वो बढ़ जाता है। तो मेरे लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए ना कुछ तो मेरे लिए हाँ क्लीनिंग होना चाहिए। इसलिए मैं अक्षय तृतीया के दिन साल में एक दिन कैजुअल लीव लेता हूँ। हम सब लोगों को 24 दिन साल की मिलती है पेड लीव, अर्न लीव, लेकिन उनको केवल एक ही दिन मिलती है। तो वो एक दिन में मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने जितने संचित पाप मैंने इकट्ठा करके रखे हैं लोगों से लेकर, सेवा के रूप में मेरी सेवा है वो सब यहाँ पर आकर मैं साफ कर देता हूँ, फिर पुनीत होकर पावन होकर मैं अपनी सेवा में चला जाता हूँ। अरे ऐसा, हाँ पावन सरोवर नंद सरोवर में हमारे घर पे आके स्नान करके पवित्र हो रहे हैं। तो वहीं पर उनका प्लान जो है वो कैंसिल हो गया था मन में, लेकिन अचानक उनकी दृष्टि जो है वो उस किनारे में गई, पावन ये सरोवर जो है नंद सरोवर, वहां देखा तो अरे कई हजारों सुंदर सुंदर युवतियां खड़ी है वहां पर, प्रकाशमान सुंदर अलंकार से विभूषित, और वो भी वही कर रही है, नदी में स्नान कर रही है, लोटपोट हो रही है, स्नान कर रही है, लोटपोट हो रही है। तो उन्होंने जाके बहुत यात्रा के वहां से वहां किनारे में गए और देवियों आपका परिचय दो, आप क्या कर रहे हैं। तो ये कह रहे मैं गंगा हूँ, कोई कोई सरस्वती हूँ, कोई कह रहे कावेरी हूँ, सिंधी हूँ, भीमा हूँ, गोदावरी हूँ, सब अपना अपना परिचय दे रहे हैं। बोले सब लोग, हम लोग साल भर सब लोगों के पापों को ग्रहण करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन यहाँ आके स्नान करते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी सेवा में चले जाते हैं। उसी समय सब टिकट कैंसिल कर दिए उन्होंने, नहीं जाना है हमको अभी। सब हमारे धाम में आके स्नान करते हैं, हमें क्या जरूरत है वहां जाने की। तो भगवान ने वही बात उनको, नंद बाबा को बताई, लेकिन इस अलग माध्यम से बताई, है ना। दर्शन भी करवाया सभी धामों का, नदियों का, सभी देवियों का दर्शन कराया और वही बात को सिद्ध किया कि यहां से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। सभी नदियां आपको जो जो पता है उतने सारे तीर्थ, सारी नदियां, सब कुछ यहाँ विराजमान है। राधा कुंड की बड़ी लंबी लीला है, लेकिन राधा कुंड में तो सबसे अधिक 88,000 के 68,000 तीर्थ जो है विराजमान है, पर्वत नदी कुंड सरोवर जो भी पवित्र स्थान है जो भगवान की सेवा में अपना सेवा देते हैं वो सब वहां पर विराजमान है उस जल के अंदर। तो ऐसे ब्रज में अनंत द्वारका का सागर रत्नाकर के रूप में कोसी में विराजमान है, भगवान से आंखों से अश्रु से निकली हुई नदी है, भगवान विरह में द्वारका में रोते थे तो वहां पर गोमती नदी पर निर्माण हो गई थी, द्वारका में है वो, भगवान के द्वारका निवास में वो ब्रज की याद करके रोते थे, उनके अश्रुओं से बनी हुई नदी है गोमती नदी। गोपियों ने जिद किया कि आप अपना द्वारका यहाँ प्रकट कीजिए, तो भगवान ने द्वारका का रत्नाकर सागर जो है वो एक कुंड के रूप में प्रकट किया और गोमती को भी प्रकट किया कुंड के रूप में। उसका जीर्णोद्धार रमेश बाबा जी ने किया है। तो क्या नहीं है ब्रज में, हर चीज है ब्रज में। इसलिए यहाँ पर आने के बाद अन्य कई अभिलाषा मन में होनी नहीं चाहिए, अरे हमारा तो वो पुष्कर रह गया करने का, पुष्कर जाएंगे, जाइए आप, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दुख करने की बात नहीं, नहीं गए तो जा नहीं पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अंतिम स्थान पे पहुंच गए तो हम बोलेंगे अरे हम चर्च गेट पहुंच गए लेकिन मरीन लाइन्स नहीं गए। ऐसे बोलने से क्या मतलब है, अंतिम स्थान आपको प्राप्त हो गया, अंतिम लास्ट स्टेशन प्राप्त हो गया, या ट्रेन खत्म होती है, क्यों आप बीच में के संस्था की और जगह की बात कर रहे हैं। ये अंतिम स्थान है, यहाँ पर वही जीव पहुंचता है जो भाग्यवान है, जो सच रूप में सत्य रूप में राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर चुका है, वही जीव यहाँ पहुंच सकता है। अन्य कोई दान पुण्य करके नदियों में स्नान करके, कोई अंधे को चश्मा देके, कोई किसी बूढ़े को लाठी देके, कोई विद्यार्थी को पुस्तक देके, दान धर्म करके यहाँ पर नहीं पहुंच सकता है। यहाँ पर आने के लिए किसी ना किसी जन्म में हमको वैष्णवों की सेवा करनी ही पड़ेगी, उनकी संतुष्टि प्राप्त करनी ही पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर आदमी पहुंच सकता है। क्योंकि सर्वसाधारण कर्मफल देने वाला धाम नहीं है कोई। यहाँ पर जाके अगर आप तर्पण करेंगे तो ये मिलेगा, वहां पर जाकर आप 101 रुपया गोदान करेंगे तो अगले जन्म में क्या होगा, ऐसे होगा, बहुत सारा शास्त्र में लिखा हुआ है, वो सब यहाँ से बाहर है, वो शास्त्रों को यहाँ पर प्रवेश ही नहीं है, कोई काम ही नहीं उनका इधर। कर्म फल, ज्ञान फल, सिद्धि वद्धि, कोई यहाँ पर कुछ काम नहीं उसका, यहाँ पर केवल प्रेम का विषय चलता है बस। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए सब कुछ, वैकुंठ का आनंद छोड़ के चोरी करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, नंद बाबा के गोद खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं, ऐसा धाम है ये। तो बार बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मन से, तन से, धन से, बुद्धि से, हाँ विचार से, बार बार धन्यवाद कृतज्ञता हमको प्रकट करनी चाहिए यहाँ पर मिले हुए चंद क्षणों के बास के लिए भी। ये अगर कृतज्ञता हम उत्पन्न करेंगे तो आपका आना, आपका सेवा सब सफल है, क्योंकि आप जान गए कि हम कहाँ आए। राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे दो रोटी खिला दो, बहुत भूख लग रही है, तो बोले पागल आदमी है तू, जीवन भर की रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ, दो रोटी क्यों मांग रहा है। वैसे कृष्ण भगवान के पास आएंगे, बोलेंगे बाबा, नंद बाबा, कृष्ण भगवान, हमें लड़के को नौकरी दिला दो, एक लड़की को अच्छा वर मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्यों आते हैं यहाँ पर इसे मांगने के लिए, हाँ जाओ देवी देवताओं के पास जाओ, दुकान खोल के बैठे हैं सब लोग आपको अच्छा जमाई और अच्छी बहू देने के लिए, उनके पास लाइन लगाओ और जो पाइए वो ले लो। ये स्थान वो मांगने का नहीं है, ये यहाँ पर आके ऐसा चीज मांगना मतलब मूर्खता की परिसीमा है। हमको यहाँ पर आकर केवल भगवान की सेवा मांगनी चाहिए, उनके चरणों में अनुनय, उनके चरणों में अनुराग, प्रेम, सेवा मांगने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। सभी प्राप्तियां जीवन की उसमें सम्मिलित हैं, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी फिर भी सम्मिलित है, प्रकट होंगी या नहीं प्रकट होंगी लेकिन सम्मिलित उसके अंदर है सब प्राप्तियां। ऐसा निरपेक्ष होकर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का जीव जो है परम भाग्यवान जो यहाँ पर पहुंच सकता है। तो हम लोग सब लोग ऑलरेडी भाग्यवान है, इसमें कोई गर्व करने की बात नहीं, ये भाग्य हमें उनकी कृपा से मिल रहा है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, ना हमने कोई तपस्या हिमालय में जाकर नहीं किया है, ना कोई विरक्ति, सब कुछ परिवार छोड़कर, धन छोड़कर कुछ कार्य नहीं किया हमने, तो आए ऐसे हम लोग परिवार के, मतलब भौतिक दुनिया के जीवन है हम लोग, जीव है सब लोग, व्यवसाय करने वाले सब लोग ऐसे ऐसे जीव है, लेकिन फिर भगवान ने सहारा दिया है, प्रवेश दिया है, हाँ कितना कृतज्ञ होना चाहिए हमको। तो आप बार बार वंदन कीजिए। जब ये लीला हुई तभी इस सरोवर का नाम पावन सरोवर बन गया, और यही सरोवर में, पावन सरोवर में कृष्ण भगवान अपनी गायों को, भैंसों को, बकरियों को, ऐसा नहीं उनके पास केवल गाय थी, भागवत में वर्णन आता है उनके पास भैंसे भी थी, उनके पास बकरियां भी थी, अन्य अनेक प्राणी भी थे, सबको बड़े प्रेम से रखते थे वो अपने बालक की तरह, और सबको विहार करने में ले जाते थे। और उसमें देखो एक ऐसा एक स्लोप बना हुआ है, उधर देखो राइट में एकदम आगे एकदम उस किनारे में देखा है स्लोप बना हुआ है ना, स्लोप वो स्लोप जो है वो वहां पर वो गायों को उतार कर जलपान कराते थे, अपने गौचारण में जलपान कराते थे। इसी पावन सरोवर के किनारे में वो आगे देखेंगे तो एक देखो राइट साइड में उधर मैं उंगली दिखा रहा हूँ ना, वो जो व्हाइट बिल्डिंग है आगे की येलो बिल्डिंग है वो वल्लभाचार्य जी की बैठक है। और वहीं पर कहीं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पता करूंगा मैं कभी, चैतन्य महाप्रभु जी ने स्नान करके भी यहाँ पर भजन किया था। वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु एक कंटेम्प्ररी हैं, एक समय के थे वो, तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने बहुत पक्का बैठक उनकी है। महाप्रभु जी यहाँ पर जब आए काम्य वन से तो यहाँ पर उन्होंने स्नान किया है और संकीर्तन यज्ञ भी किया है, संकीर्तन भी किया है। परम पावन भूमि है ये, जो जगह पर कृष्णा ने लीला की थी उस जगह पर चैतन्य महाप्रभु ने भी भेंट देकर अपना जो कृष्ण जीवन में कृष्ण अवतार में जो उन्होंने लीला किया था, रास लीला और परम आनंद बरसाया था, उसी आनंद को दोबारा अलग रूप से हरिनाम संकीर्तन से बरसाया उन्होंने उन्हीं जगह पर जाकर, और उनको अनंत गुना, अनंत क्या कहते हैं, अनंत बड़ा गुणित करके प्रकट किया सबके लिए, और भी आसान करके। ऐसे नहीं, रासलीला में प्रवेश करने के लिए तो लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला, देवताओं को नहीं मिलता है, लेकिन वो रासलीला का जो आनंद है उसका सार लेकर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन में डाल दिया और वो आम जनता के लिए प्रस्तुत कर दिया, अलग मार्ग से दे दिया आपको वही आनंद। तो ये जगह है बहुत पुनीत है। यहाँ से फिर वो जैसे बताया कहानी हमने पहले, भगवान पहाड़ पर गए और गुफा में उन्होंने नंद बाबा और कृष्ण बलराम, कृष्ण भगवान केवल कृष्ण और नंद यशोदा का वहाँ पर स्थापना किया, उनको प्रकट किया पहले वहाँ से, फिर मंदिर बनाया वहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के दिन की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं और यहाँ से हम अभी बरसाना चलते हैं। हरे कृष्णा।